الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن جلد نمبر 5 سے، اور آیات نمبر 21 اور 22 اور 23. تو ان تین آیات کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، معارف و مسائل کے اوپر تھے ہم، پیج نمبر 43 کے اوپر، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے شروع کرتے ہیں. جو اللہ رب العزت نے فرمایا، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ، ٹھیک ہے، تو اسے پہلے تک ہم نے پڑھ لیا تھا. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا اپنی بیوی سے کہ یوسف علیہ السلام کے ٹھہرانے کا اچھا انتظام کرو، اکرمی مثواہ، اچھا انتظام کرو اس کے ٹھہرنے کا. مطلب یہ ہے کہ قافلے والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا، تو تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی وزن کے برابر سونا اور اس کے برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی. ٹھیک ہے، اس زمانے میں کرنسی جو ہوتی تھی سونا اور چاندی ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بارٹر ٹریڈ بھی ہوتی تھی، یعنی کسی شے کے بدلے میں کوئی دوسری شے، ٹھیک ہے، تو شے کو بھی یعنی چیز کو بھی جو ہے وہ بطور قیمت کے دیا جاتا تھا. تو سونا بھی جو ہے وہ وزن کے برابر سونا قیمت لگائی لوگوں نے، یعنی جس طرح سے وہ نیلام کرنا ہوتا ہے، نیلام میں جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ قیمت لگاتے ہیں، تو اتنی زیادہ قیمتیں لوگوں نے لگائیں. اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ باقاعدہ جس کو سلیو ٹریڈنگ کہتے ہیں، سلیو ٹریڈنگ، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا کام ہی یہ تھا، جو کہ غلام خریدنے کے لیے آتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر، تو یعنی یہ پہچان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز خریدنے کے لیے آ رہے ہیں تو بھئی اس چیز کی پہچان بھی تو ہونی چاہیے نا. جیسے ہم کہیں پہ کچھ کوئی نئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی نئی مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو ہم کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کرتے ہیں کہ جو کہ اس کموڈیٹی سے واقف ہو. ایون بکرا خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بکرے سے واقف ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا دانت کیسے چیک کرتے ہیں، اس کی عمر کیسی ہوتی ہے، اس کا فلانا کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کوئی اگر سونا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ذرا جاننے والوں کو لے کے جاتے ہیں کہ جس کو سونے کی کچھ پہچان ہو. تو یہ پہچان والے لوگ تھے، جبکہ جو قافلے والے لوگ تھے جنہوں نے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو خرید دیا تھا، تو ان کا کام نہیں تھا یہ سلیف ٹریڈنگ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ یعنی بہت ہی دراہم معدودہ، ہے نا، بہت ہی گنے چنے سکوں کے بدلے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو خرید لیا ان کے بھائیوں سے، ٹھیک ہے. ان کو پہچان نہیں تھی، جوہری کو جس طرح پہچان ہوتی ہے ان کو پہچان نہیں تھی، جبکہ یہاں پر پہچان والے لوگ تھے. تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے قیمت لگائی، کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک تو حسن کے اندر بہت زیادہ تھے نا، پورا یعنی آدھی دنیا کا حسن جو تھا نبی علیہ السلام فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور دوسرا یہ کہ جو یعنی جو عزت اور اکرام والے لوگ ہوتے ہیں نا اور اچھے خاندان والے ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے کے اوپر پہلے سے جو ہے نا یہ شرافت اور بزرگی اور یعنی عزت و اکرام جو ہے وہ چھلکتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی پیشہ ور قسم کا انسان ہے، کوئی कोई क्रिमिनल किस्म का इंसान है या ये किसी शरीफ घराने का है, खुसूसन पुलिस वालों को, है ना। आपने देखा होगा कि अगर आप शरीफ नजर आने वाले हैं तो किसी गलत जगह पे अगर आप पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गए तो वो देख करके ही जो है ना, चलो 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 मियाँ आपके यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है ना, आप इस किस्म के नहीं है, आप जाएं जाएं आप जाएं, है ना, और किसी और बंदे को जो है वो एकदम से पकड़ लेंगे, है ना। तो शक्ल से पता चल जाता है उनको, ठीक है। तो इसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक जो था, उससे इन लोगों को अंदाजा हो गया था कि भाई ये कोई मामूली शय नहीं है, ये कोई बहुत ही बड़ी किस्म की चीज है, तो उनकी कीमत भी उसी हिसाब से लगाई, ठीक है। ये दौलत अल्लाह ताला ने अजीज मिस्र के लिए मुकद्दर की थी, उसने ये सब चीजें कीमत में अदा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया, ठीक है। तो तफसीर कुर्तुबी के अंदर ये तफसीर कहाँ से आई, ये मोस्ट लाइकली जो है वो बनी इसराइल की जो रिवायात होती हैं, इसराइली रिवायात, तो वहां से ये डिटेल्स जो है वो मुफस्सरीन ने ली हैं, ठीक है। जैसा कि पहले इरशाद कुरानी से मालूम हो चुका है कि ये सब कुछ कोई इत्तेफाकी हादसा, इत्तेफाकी वाकया नहीं, बल्कि रब्बुल इज्जत की बनाई हुई मुस्तहकम तदबीर के अज्जा हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के जो है वो निटिग्रिटीज, डिटेल्स होती हैं उसके, यानी सब ये सब का सब जो है ना वो उसी का असल में हिस्सा होता है, जुज होता है। इत्तफाकी तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। इत्तफाकी का मतलब क्या होता है कि रैंडम, बिल्कुल जिसका कि पहले से कोई उसूल ना हो, देर इज नो रूल गवर्निंग इट, ठीक है, उसको इत्तफाकी कहा जाता है। कोइंसिडेंस, को इंसिडेंस अंग्रेजी में उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो भाई अगर इस कायनात को चलाने वाला कोई है ना, अगर आप कहते हैं कि कोई है, तो फिर को इंसिडेंस कैसे हो सकता है, इत्तेफाक कैसे हो सकता है। या तो कह दो भाई खुदा, यानी हम कोई कोई ये नहीं कह रहे कि आप नाउजुबिल्ला कुफर कर लें, ठीक है ना, लेकिन बात समझने की खातिर कि भाई या तो भाई आप इस बात पे सेट हो जाए ना कि नहीं है कोई, बस ये रैंडमली चल रही है पूरी कायनात, है ना, डार्विन के थ्योरी के हिसाब से चल रही है या पता नहीं किसी और काफिर के थ्योरी के हिसाब से चल रही है, तो फिर आप कहें इत्तेफाकन ये हो गया और खुद और जो है वो कोइंसिडेंस हो गया और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। या अल्लाह के बंदे, अगर तुम अल्लाह को मानते हो और अल्लाह को यानी क्या मानते हो भाई, तुम अल्लाह को कायनात चलाने वाला नहीं मानते, फिर क्या मानते हो तुम अल्लाह ताला को, क्या क्या समझते हो तुम अल्लाह ताला को। तो भाई जब है चलाने वाला तो देर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस, इत्तेफाक बिल्कुल नहीं होता, बल्कि सब कुछ अल्लाह ताला की प्लानिंग के मुताबिक ही होता है। इसी वजह से हमारे मशायख जो है वो लफ्ज इत्तेफाक आमतौर पे इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि कोई ऐसा मामला होता है तो जिस उसको जो है ना वो कुदरतन कहते हैं, भाई कुदरतन ऐसा हुआ, यानी अल्लाह की कुदरत में ऐसा था कि ये चीज हो गई, ठीक है। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी के लिए उस मुल्क के सबसे बड़े इज्जत वाले शख्स को मुकद्दर फरमाया अल्लाह ताला ने, यानी फैसला किया कि ये खरीदेगा यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इब्ने कसीर ने फरमाया कि ये शख्स जिसने मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा वो मुल्क के मिस्र का वजीर खजाना था, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जिसको आज के दौर में कहा जाता है, वजीर खजाना उर्दू में फाइनेंस मिनिस्टर को ही कहा जाता है, जिसका नाम कितफीर या इतफीर बतलाया जाता है, और बादशाह मिस्र उस जमाने में कौम अमालका का एक शख्स रयान बिन उसैद था। कौम अमालका जो है ये वही कौम है जो कि बाद में जा करके यानी मूसा अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ था कि भाई अपने लोगों को ले जा करके इन लोगों से लड़ें और फलस्तीन के अंदर दाखिल हो, तो कौम अमालका के लोग जो थे ना वो बहुत लंबे चौड़े, ये असल में कौम आद के बचे हुए कुछ लोग थे, ठीक है। कौम आद जो है वो अजाब के अंदर खत्म हो गई थी आद, ठीक है, तो आद के जो थे ना वो थे वो सुतूनों जैसे, यानी खजूर के बड़े बड़े सुतूनों जैसे उनके कद होते थे और बड़े ही ताकतवर तरीन जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाए थे, कि बस्तियों में उनके जैसे ताकतवर जो है वो उसके बाद अल्लाह ताला ने नहीं बनाए, तो उनके कुछ बचे खुचे लोग थे किसी तरीके से, जैसे भी बचे वो, तो वो जो है वो वहां पर भी फलस्तीन पे भी काबिज हुए हुए थे और यहाँ पे मिस्र में भी ये शख्स जो था वो उन्हीं लोगों में से था, रयान बिन उसैद, जो बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम लाया और मुसलमान होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इंतकाल कर गया। अल्लाह ताला ने उसकी इस किस्मत में हिदायत लिखी भी थी, तो अमालका में से होना जो है वो इसके इस्लाम में रुकावट नहीं बन सका। अजीज मिस्र जिसने खरीदा था उसकी बीवी का नाम राहील या जुलैखा बतलाया गया है। जुलैखा ज्यादा मशहूर नाम है उसका, लोगों को ज्यादा याद रहता है। अजीज मिस्र कतफीर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक अपनी बीवी को ये हिदायत की कि उनको अच्छा ठिकाना दे, आम गुलामों की तरह ना रखे, उनकी जरूरियात का अच्छा इंतजाम करे। ठीक है, तो ये जो अजीज मिस्र था, अजीज किसको कहते हैं, एक तो इज्जत वाला और ताकत वाला, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात में से अल अजीज भी एक सिफत है, ठीक है। तो उसका तर्जुमा जो है ना वो उर्दू में कैसे करते हैं, जबरदस्त, जबरदस्त यानी जिसका दस्त, दस्त कहते हैं हाथ को, वो जबर पर होता है, जबर ऊपर वाली पोजीशन को कहते हैं ना, जेर नीचे वाली पोजीशन को कहते हैं, ठीक है। और जो पेश पेश रहता है उसको पेश कहते हैं। तो जबरदस्त यानी इसका हाथ ऊपर था, यानी ही वॉज इन कंट्रोल। एक्चुअली जो अफेयर्स ऑफ द ममलिकत चलाने वाला था ना, वो तो ये था, बादशाह साहब जो थे तो वो या तो टोकन किस्म के बादशाह होंगे, जैसे आजकल के किंग एडवर्ड साहब या वो क्वीन एलिजबेथ होती है, कॉमनवेल्थ की जो है वो क्वीन है, लेकिन बस उसके पास माल दौलत तो बहुत होता है लेकिन हुकूमत में उसका कोई, उसकी कोई से नहीं होती, ठीक है। तो असल तो जिसकी से होती है उसी की बात मानी जा रही होती है। तो माजी के अंदर ऐसे बहुत सारे मामला, इवन मुसलमान हुकूमतों के अंदर भी, कि जी बादशाह सलामत तो कोई है, खलीफा साहब तो कोई है, लेकिन बात जो है ना वो किसी और की चल रही है, किसी वजीर की चल रही होती है, किसी और मुशीर की चल रही होती है, किसी की चल रही होती है। तो अजीज मिस्र का भी ऐसे ही मामला था, ठीक है। ही वॉज नॉट द किंग बट ही वॉज सॉर्ट ऑफ ए किंग मेकर, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क में भी किंग किसी और को बना देते हैं लेकिन पीछे असल में कोई और चला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये किंग मेकर कैसे था, क्योंकि इसके पास जो मिनिस्ट्री थी ना, ये मिनिस्ट्री जो थी ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री थी। अब ये कौन सी थी, खजाना, यानी इसके पास जो है वो माल दौलत, जो जिसको बैतुल माल मुसलमानों के मुआशरे में कहा जाता है, लेकिन यानी ट्रेजरी, ठीक है। तो इस यानी ही यूज टू बी द प्लानर ऑफ हाउ टू मैनेज, इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको मुल्क के अंदर कैसे मैनेज करना है, किसी रिसोर्स को जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है, किसको जो है वो आपने बचा के रखना है, किसको अभी इस्तेमाल करना है, किसको बाद में इस्तेमाल करना है, कैसे कहाँ कैसे आपने जो है वो अः अब जो 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 डेवलपमेंट है कंट्री की, तो उसमें आपने किस चीज के अंदर पैसे लगाने है ना, बजटिंग वगैरह सारी की सारी। तो जो 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 काफिर इंसान होता है, ठीक है, जो कि आखिरत का मुनकर होता है, तो उसके नजदीक सबसे अहम चीज क्या होती है, उसके नजदीक सबसे अहम चीज होती है ना वो पेट होता है, पेट, ठीक है ना, पेट शरीफ, ठीक है। और पेट जो है ना वो फिर यानी वो माल माल दौलत के जरिए से भरा जाता है, यानी ख्वाहिशात, ख्वाहिश परस्ती, नफ्स परस्ती, ठीक है। तो जाहिर है एक काफिर मुल्क के अंदर जो आखिरत का मुनकर हो, तो वहां पर सबसे अहम जो वजारत होती है वो वजारत जो होती है वो वजारत माल होती है, क्योंकि माल से जो है वो सारे काम चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है वो आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग नहीं थे, ये तो पेगन्स थे, ठीक है। तो इनके यहाँ भी जाहिर है जो वजारत खजाना थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आजकल जैसे कि IMF आप समझ लें, है ना, या बैंकिंग इंडस्ट्री समझ लें, तो ये सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अहम यही लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंसेस होते हैं। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं, ईमान वालों के नजदीक जो है वो आखिरत सबसे अहम होती है। इस वजह से ईमान वाले जो जो जगह होती है वहां पे मौलवी साहब जो है वो सबसे ज्यादा अहम होते हैं। कौन सबसे ज्यादा अहम होते हैं, वहां पे वजारत विफाकी, वो क्या कहते हैं उसको, मजहबी उमूर, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो इस वजह से हमारे यहाँ भी ये वजारत खजाना ही सबसे ज्यादा अहम समझी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली इतना नहीं समझ जाती, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी चीज ज्यादा अहम है, ठीक है, वो सर्वाइवल, इसी तरह से अपनी गद्दी बचा करके रखो, ठीक है। माल शाल जो है वो उतना अहम नहीं है, हमें हमें माल शाल हमें माल वाल से इतनी ज्यादा शगफ नहीं है जितना के दूसरों को शगफ होता है, तो हमारे लिए कुछ और चीजें जरा ज्यादा अहम है। अल्लाह करे कि वो दीन हो जाती है, लेकिन वो दीन अब तक बन नहीं सका, ज्यादा अहम हमारे लिए। तो दीन में भी माल की बड़ी अहमियत है, ठीक है, माल की बड़ी अहमियत दीन में किस 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 लेवल तक है, कि दीनी जो काम होते हैं ना उनको सपोर्ट करने के लिए दुनियावी रिसोर्सेस का इस्तेमाल, ठीक है, ये यानी सुन्नत से साबित है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से ये बात साबित है। तो तो एज अ सपोर्टर जो है वो दीन, वो भी दीन का सपोर्टर, असल मकसद मकसूद जो है ना वो क्या है, दीन, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह को राजी करना कैसे है, दीन के जरिए से राजी करना है, और जिंदगी का मकसद क्या है, बंदगी है, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, तो बंदगी हमारी जिंदगी जिंदगी का मकसद है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, है ना, बंदगी के लिए पैदा किया गया, तो भाई असल मकसद बंदगी है, माल जो है वो उसको सपोर्ट करने के काम आता है, ठीक है, तो इट्स जस्ट अ मीन्स टू द एंड, ठीक है, तो मीन्स की एक दर्जे तक अहमियत होती है। तो दीन में ऐसा नहीं है कि जी माल बिल्कुल ही कुछ नहीं और माल नहीं होना चाहिए और माल की कोई हैसियत नहीं है और बस जो है ना वो इबादत करो और नमाजें पढ़ो और है ना लड़ाई वड़ाई करते रहो अपने हाथों से खाली, नहीं, तलवारों से लड़ाई करने की जरूरत है, और यानी आपको जो है वो असलहे की भी जरूरत है, तो असलहा कहाँ से आएगा, माल के जरिए से आएगा, ठीक है। उसी तरह मस्जिद जो है वो बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, माल की जरूरत है, पहले आपको तो जमीन खरीदनी पड़ेगी, ठीक है ना, आप किसी दूसरे की जमीन के ऊपर धोस धमकी से जो है वो कब्जा करके मस्जिद नहीं बना सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने पहली मस्जिद जो बनाई वो भी कुबा के अंदर बनाई, ठीक है, तो वो भी कुबा वालों की जमीन थी, लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर जो जमीन दी है जो कि शहर की बिल्कुल बीचों बीच थी, तो वो जमीन किसी दूसरे की मिल्कियत थी, तो उसको खरीद करके लिया है नबी अलैहिस्सलाम ने, और खरीदने के लिए पैसे किसने दिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो जो माल होता है उसके जरिए से दीन को सपोर्ट किया जाता है, इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बट और ठीक है। तो बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारी बात होगी, अब हम आगे चलते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि दुनिया में तीन आदमी बड़े अकलमंद और कयाफा शनास साबित हुए। कयाफा शनास उसको कहते हैं जो किसी को किसी की शक्ल देख करके ना, चेहरा देख करके उसके किरदार के बारे में या उसकी फिक्र के बारे में, उसकी सोच के बारे में सही अंदाजा लगा ले, उसको कयाफा शनास कहते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि दुनिया में तीन आदमी बड़े अकलमंद और कयाफा शनास साबित हुए। अव्वल अजीज मिस्र, कि जिसने उनके कमालात को अपने कयाफे से मालूम करके बीवी को ये हिदायत दी, है ना, कि भाई इनका अकरमी मसवाई है ना, इनकी जो है वो अच्छी जो है वो यानी इज्जत से इनको रखना, ये आम गुलाम नहीं है। दूसरे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वो साहिबजादी कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपने वालिद से कहा, या अबत इस्तअजिर हो इन्न खैर मन इस्तअजरत अल-क़वीयुल अमीन, ठीक है, यानी अब्बा जान उनके मुलाजिम रख लीजिए, इसलिए कि बेहतरीन मुलाजिम वो शख्स है जो कवी भी हो और अमानतदार भी हो, ठीक है। तो शी वॉज रियली रियली पेइंग अटेंशन कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो कवि तो हैं, वो तो चलो कोई भी देख के बता सकता था कि इतने बड़े पत्थर को उन्होंने हटा दिया, लेकिन उन्होंने नजर उठा करके नहीं देखा, उन्होंने कोई बात इधर से उधर नहीं करी, नौजवान लड़कियां सामने थी, है ना, बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, तो इससे उन्होंने क्या नतीजा खज किया कि ये सिर्फ कवि नहीं है बल्कि अमानतदार भी है, ठीक है। और तीसरे हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, के जिन्होंने अपने बाद फारूक के आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के लिए मुंतखब फरमाया, ठीक है, अकलमंद और कयाफा शनास, यानी इन्होंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को कैसा पहचाना, ठीक है, कि अच्छा इन्होंने जो है वो यानी डायरेक्ट अबू उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को खलीफा मुकर्रर किया अपना, ठीक है, ये नहीं कि भाई छह की टीम बनाई और उनमें से मुसलमानों को कहा कि भाई तुम इनमें से जो है ना वो किसी को सिलेक्ट कर लेना, बल्कि डायरेक्ट इन्हीं को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे ना, ये बड़ी स्पेशल पर्सनैलिटी थे, ये अल्लाह तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को जो खलीफा अता फरमाए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में, तो ये एक यानी ये क्या थे, ये कुरैश के मुअज्जिज़ तरीन इंसानों में से थे, उम्र इनकी ज्यादा नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र से 2 साल छोटे थे, ये 38 ईयर्स के थे जब आप को नबूवत मिली थी, ठीक है, उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन इज्जत और मुकाम इनका बहुत ज्यादा बुलंद था, नबी अलैहिस्सलाम
तो सदाकत और अमानतदारी की वजह से ना, ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत की वजह थी और लोगों की महबूबियत की वजह थी। इनकी महबूबियत की वजह, एक तो ये भी बहुत अच्छे इंसान थे, बाइखलाक इंसान थे, ठीक है, लेकिन साथ साथ जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, ठीक है, और बड़े जबरदस्त किस्म के ताजर भी थे, ठीक है, और यानी शरीफ घराना भी, और दुनिया का माल दौलत भी इनके पास बहुत था। तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को जो है ना, वो एक तो इमीडिएटली सबसे पहले मुसलमान होने वाले मर्द यही थे।
हाँ
अच्छा, इन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम को खूब सपोर्ट किया अपने माल के जरिए से, हत्ता के अपना सब कुछ दे देते दे थे, इनके पास कुछ बचता भी नहीं था, है ना, वो जो गजवा तबूक वाला वाकया सबको पता है कि सब कुछ लेकर के आ गए, हत्ता के जो 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 घर के दीवारें थी उनके ऊपर से मिट्टी वगैरह भी जो है ना, वो भी झाड़ू दे करके वो भी लेकर के आ गए, कुछ भी नहीं छोड़ा अपने औलाद के लिए, अपने बूढ़े बाप के लिए, अपने घर के लिए, और जवाब क्या दिया कि उनके लिए अल्लाह उसका रसूल काफी है, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल भी कर लिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से सब कुछ, ठीक है। इन्होंने जो है वो जब आप सस्म को जरूरत पड़ती थी, खुसूसन यानी एक तो अशरा मुबशरा में से पांच जो हैं वो इन्हीं के बुलाए हुए लोग हैं, ठीक है, और फिर मस्जिद नबवी जो है वो इन्होंने जगह खरीद करके नबी अलैहिस्सलाम को हदिया करी, और बेशुमार ऐसे वाकयात थे, मामला थे कि जिसके अंदर इन्होंने दीन को सपोर्ट किया, नबी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट किया, ठीक है। आप सरसरम तो जॉब नहीं करते थे ना, आप सरसरम को सबसे पहले किसने सपोर्ट किया, आप सरसरम की अपनी अहलिया मोहतरमा ने, जो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, ठीक है, उनके बाद फिर इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा, इनसे अल्लाह ताला ने एक तो आप सरसरम की जिंदगी में ये सपोर्ट वाला काम दिया, ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अल्लाह ताला ने इनसे जो है ना वो एक बड़ा स्पेशल काम किया। वो स्पेशल काम क्या था कि इनकी जो दौरानिया खिलाफत थी तकरीबन 2 साल 2 महीना, ठीक है, इसके अंदर फितने पैदा हुए। नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद बजाहिर तो ऐसा लगता था ना, ऐसा होता है कि भाई अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा जबरदस्त काम किया होगा कि अब तो फितनों की तो कोई गुंजाइश नहीं हुई होगी, कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि भाई कोई फितना भी आ सकता है। इतना मजबूत इमारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम कर दी, तो मजबूत इमारत को तोड़ने की कोशिश करने वाले जो हैं वो तो हो ही नहीं सकता, इतनी मजबूत इमारत को कोई जो है वो तोड़ने की कोशिश करे, ठीक है, या उसके अंदर जो है वो दरारें डालने की कोशिश करे। होता है ना भाई, एक जहन के अंदर एक बात आती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो काम है तो ये तो अब जो है वो 1300 साल तक ये तो बगैर फितनों के चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने अजीब मामला फरमाया। अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा होती है ना, हम अल्लाह ताला की सारी हिकमतों को समझ भी नहीं सकते। अजीब अल्लाह ताला ने मामला फरमाया कि इधर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से गए हैं और उधर जो है फितनों ने सर उठाया है, ठीक है, जिनमें से मशहूर तरीन फितने जो है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का झूठे नबी का फितना, ठीक है, और दूसरा फितना जो था वो मानेईन ज़कात का फितना। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की जिंदगी के अंदर तीन सबसे अहम वाकयात, तीन मेजर वाकयात क्या हैं? नंबर वन, मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकूबी का फितना, किसकी सरकूबी वाला काम, ठीक है, और ये वो वक्त था कि जब मुसलमान हिले हुए थे नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद, सब अपने दिलों के अंदर जो है वो एक एक यानी एक कमी महसूस कर रहे थे, इधर मिट्टी डाल करके आए हैं और दिलों के अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहे हैं, ठीक है, गम के मारे बुरा हाल हुआ हुआ है, किसी का तो इंतकाल ही हो गया इस गम के अंदर, इतना गम, तस्वर करें गम में किसी का इंतकाल हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, बड़ा बड़ा गम आता है लोगों के ऊपर लेकिन कोई दुनिया से तो नहीं चला जाता गम की वजह से, ठीक है, सहाबा का इंतकाल हो जा रहा है, और जो है वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो है वो यानी अजीब गरीब किस्म का उनका रिएक्शन हो रहा है कि मैं, जिसने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया से चले गए, मैं उसका सर कलम कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे मौके के ऊपर जब मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना शुरू हुआ है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो लश्कर रवाना किए, एक रवाना किया उसको कामयाबी नहीं हुई, दूसरा रवाना किया उसको भी कामयाबी नहीं हुई, तो फिर तीसरा रवाना किया हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के साथ, ठीक है, पीछे जो है वो पता नहीं क्या होगा, कैसे लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं होता, मैंने तो भेजना है। फिर उसके बाद मानेगी ने जकात का मामला, उसके अंदर भी अबू बकर सिद्दीक उन्होंने इतनी ज्यादा इस्तेकामत दिखाई है कि बड़े बड़े दूसरे सहाबा जो हैं वो हैरान रह गए कि ये इस हालत में भी जो है वो, यानी इतनी छोटी सी बात बजाय नजर आ रही थी कि भाई उन्होंने कहा था कि हम जकात बिल्कुल अदा करेंगे लेकिन बस मरकज में नहीं भेजेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर ये एक कोड़ा भी मरकज में भेजने से मना करेंगे ना, मैं फिर भी इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो मामला पेश आया, जो कि फितना नहीं था लेकिन मामला था, कि मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ लड़ाई में इतने सारे जो है वो सहाबा शहीद हो गए, जिनमें से 500 जो थे वो हफाज कुरान थे। तो उसके ऊपर उमर फारूक खतान ने फिर मशवरा दिया कि हमें कुरान को कंपाइल कर लेना चाहिए, बुक फॉर्म के अंदर लेकर के आ जाना चाहिए। तो उसके ऊपर अबू बकर सिद्दीक का जवाब क्या था कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम नहीं किया तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों वाकयात को अगर हम देखें तो इसमें क्या चीज हमारे सामने आती है, हिफाजत दीन का काम है ना, खत्म नबूवत। इससे तो बिल्कुल दीन की इमारत जो है ना वो, अगर ये मुसलमा कजाब को छोड़ दिया जाता तो उसने टिक के तो नहीं बैठना था। इतनी बड़ी उसके पास फौज थी, इतना वहशी जंगजू किस्म का कबीला था कि उसने फिर आगे बढ़ना था और दीन की जो है वो बिल्कुल ढा करके छोड़ देना था उसने। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ये जो जकात एक 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 पिलर है बस दीन का, ठीक है, इसके अंदर हल्की सी भी तब्दीली बर्दाश्त नहीं करी उन्होंने, हिफाजत दीन का काम। और फिर उसके बाद तीसरा काम क्या था कि कुरान की हिफाजत, ठीक है, जिसके जरिए से जो है वो दीन की हिफाजत होनी थी। तो अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी सारी की सारी उम्र में क्या काम लिए हैं, हिफाजत दीन का काम। ठीक है, और फिर उनके बाद जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला आए हैं तो अब उनसे क्या क्या काम लिया है, अब हिफाजत दीन की जरूरत नहीं है, दीन महफूज हो चुका, अब क्या जरूरत है, अब दीन के फैलावे का काम। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी के अंदर फिर फुतुहात का एक सिलसिला शुरू होता है ना, जो कि दुनिया के, यानी तकरीबन सारे के सारे जो सिविलाइज दुनिया थी, खैर सारा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत बड़ा एरिया वो फतह कर लिया गया उमर फारूक रहता ना, और फिर उनके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में। ठीक है, तो उनको जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने चूज किया। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फिल अर्ध, यानी इस तरह हुकूमत दी हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन की। इसमें आइंदा आने वाले वाकये की बशारत यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अजीज मिस्र के घर में उस वक्त बहैसियत गुलाम दाखिल हुए हैं, अनकरीब ये मुल्क मिस्र के सबसे बड़े आदमी होंगे और हुकूमत का इख्तदार उनको मिलेगा। ठीक है, इस तरह हमने मक्कन्ना, हमने उनको इस्टैब्लिश किया जमीन के अंदर, फिल अर्ध। तो इस्टैब्लिश करने का जो लफ्ज है इससे पता चल रहा है कि आगे हुकूमत मिलने वाली है, इसलिए कि इस्टैब्लिश करना जो होता है ना, मक्कन्ना का जो लफ्ज है, ये सिर्फ ये नहीं कि हमने बस रहने के लिए घर दे दिया बस, ठीक है, बल्कि इसका मतलब होता है कि हमने बाकायदा अथॉरिटी दे दी। ठीक है, तो अथॉरिटी अभी तो नहीं मिली थी, अथॉरिटी तो बाद में जाकर के मिलनी थी, इस वजह से फरमाया कि इसके अंदर बशारत है। आगे फरमाते हैं वलिनुअल्लिमहु मिन तअवील अहादीस, यहां शुरू में हर्फ वाव को अगर अतफ के लिए माना जाए तो एक जुमला इस मानी का महजूफ माना जाएगा, यानी पीछे वाला जुमला क्या था, वह कज़ालिका, और ऐसे ही हमने मक्कन्ना ली यूसुफ़ा फिल अर्द, हमने यूसुफ को जमीन के अंदर इस्टैब्लिश कर दिया, और क्या किया, लिनुअल्लिमहु मिन तावील अहदीस, और हमने उनको इल्म दिया अहदीस की तावील का। ठीक है, तो फरमाते हैं कि अगर ये वही कंटिन्यूएशन में माना जाए ना, वाओ अतफ का मतलब क्या कि ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है पिछले जुमले से, ठीक है, ऐड हो रहा है पिछले जुमले में, तो मतलब क्या हुआ कि वही बात कि मक्कन्ना ली यूसुफा वाली बात जो है ना वो यहां पर भी चल रही है, तो इसका ताल्लुक भी मक्कन्ना से ही है असल में। ठीक है, कि ये जो हमने इल्म दिया ना, तो ये इल्म क्यों दिया, मक्कन्ना के लिए ये इल्म दिया, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए, उनको अथॉरिटी देने के लिए हमने ये इल्म दिया। ठीक है, तो अब इसमें एक एक महजूफ यानी जो के लफ्जों की शक्ल में मौजूद नहीं है बल्कि छुपा हुआ है जुमला। ठीक है, बहुत सारे जुमले जो होते हैं ना वो कभी छुपे हुए भी होते हैं, अल्फाज में नहीं होते लेकिन सियाको सबाक से जो है वो समझ में आ रहे होते हैं, अगरचे के अल्फाज में वो नजर नहीं आ रहे होते, उनको महजूफ जुमला कहा जाता है। ठीक है, तो वो जुमला क्या होगा कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन की हुकूमत इसलिए दी कि वो दुनिया में अदलो इंसाफ के जरिए अमन व अमान कायम करें। अदलो इंसाफ यानी ये है हिडन जुमला, महजूफ जुमला, कि दुनिया में अदलो इंसाफ के जरिए अमन व अमान कायम करें और बाशिंदगाने मुल्क की राहत का इंतजाम करें। ठीक है, ये है वो जुमला, अमन व अमान कायम करें और बाशिंदगाने मुल्क की राहत का इंतजाम करें, और इसके लिए हमने उनको बातों का ठिकाने लगाना, हम उनको बातों का ठिकाने लगाना सिखा दें, ली ताकि नुअल्लिमहु मिन तावील अलहदीस, हम उनको बातों का ठिकाने लगाने सिखा दें। तावील का तर्जुमा कैसे किया, ठिकाने लगा देना, क्या मतलब, टू पुट द राइट मीनिंग्स टू पुट द राइट राइट मीनिंग्स टू समथिंग। ठीक है, बातों का ठिकाने लगाना एक ऐसा आम मफहूम है जिसमें वही इलाही का समझना और उसको बर्रुए कार लाना भी दाखिल है। ठीक है, यानी काम में लाना वही इलाही जो है, ये तो समझने के एक थ्योरेटिकल इल्म है जो कि ऊपर से मिल गया, लेकिन उस इल्म को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना, उस इल्म को अप्लाई कैसे करना है, बर्रुए कार, कार काम को कहते हैं। ठीक है, तो रू कहते हैं चेहरा, तो यानी उसको प्रैक्टिकल फेस, एक वर्कएबल फेस कैसे देना है। जैसे हम किताबें तो पढ़ लेते हैं लेकिन किताबों के अंदर जो हमने उसूल पढ़े होते हैं, जो खैर की तारीफ पढ़ी होती है, जो शर की तारीफ पढ़ी होती है, आर वी एबल टू अप्लाई इट इन आवर लाइव्स, मोस्टली वी आर नॉट। है ना, हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं कुरान के अंदर पढ़ी हुई इन बातों को, हदीस के अंदर पढ़ी हुई इन बातों को अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी अपने अलग तरीके से चल रही होती है, और इल्म जो है वो एक अलग, गोया कि एक पैरेलल में दोनों चीजें चल रही हैं, राइट, और आपस में वो मीट नहीं हो पाती है हमारी, है ना, जिस तरह रेल की पटरियां होती हैं, है ना, तो वो पटरियां जो है वो साथ साथ तो चल रही होती हैं लेकिन आपस में मीट नहीं होती ना वो कभी भी, उसी तरह से हमारा इल्म और हमारा अमल ऐसे ही पैरेलल में चल रहा होता है, मीट अप नहीं हो रहा होता वो आपस में। ठीक है, तो भाई ये मकसद तो नहीं है इल्म का कि वो पैरेलल में चलता रहे और अमल जो है वो पैरेलल में किसी और शक्ल में चलता रहे, ये तो भाई, ये तो इल्म को अमल में लेकर के आना, इस वजह से इल्म हासिल किया जाता है, तो ये तौफीक से होता है, ये इल्म जो है वो अमल में कैसे आता है, ये अल्लाह की दीवी तौफीक से होता है। ठीक है, तो अल्लाह की दीवी तौफीक ही को यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में फरमाया कि तअवील अल अहादीस, यानी इल्म को जो है ना वो अमल में कैसे लेकर के आना है, तो वही इलाही को सही तरह से समझेंगे पहले, पहले तो इल्म को समझना है सही था भाई, इस इल्म का की एप्लीकेशन है क्या, क्या मतलब किसी चीज को अप्लाई करने से पहले उसकी एप्लीकेशन अपने हालात में क्या है, ये समझना पड़ेगा ना। ठीक है ना, बगैर समझे हुए इस बात को आप कैसे एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या मतलब कि इल्म का कामिल होना भी जरूरी है। ठीक है ना, अप्लाई करने से पहले इल्म का जो है वो, यानी उसकी एप्लीकेशन को समझना जरूरी है, फिर उसके बाद जो है वो उसको अप्लाई करना, करने की नौबत आएगी। ठीक है, तो वही फरमा रहे हैं कि ये वही इलाही का समझना और उसको बर्रू एकार लाना भी दाखिल है, और तमाम जरूरी उलूम का दाखिल का हासिल होना भी, और ख्वाबों की ताबीरें सही भी, ख्वाबों की ताबीरें सही भी दाखिल है। एक आम आदमी तावील उल अहादीस से क्या समझता है, ख्वाबों की तावील उनको सिखा दी, है ना, मतलब एज इफ के ख्वाबों की तावील जो है ना बस यही सब कुछ है, क्या मतलब, जो जो इस तरह से समझेगा ख्वाबों को की तावील को सब कुछ समझेगा तो वो यही समझेगा ना कि भाई यानी ख्वाब में ही सारा काम हो गया। ठीक है, क्योंकि ख्वाब में हर चीज दिखा दी जाएगी, और ख्वाब को जो है वो सही से इंटरप्रेट करना जिस बंदे को आ जाएगा तो वो रात को ख्वाब देखा करेगा और सुबह को उठ करके जो है वो उसके ऊपर अमल कर लिया करेगा, सारा काम सेट हो जाएगा। ठीक है ना, वो हमारे मशायख उसको कहते हैं कि ख्वाब में ही सुलूक तय हो गया, या मनाम में, मनाम कहते हैं नींद को। ठीक है, तो नींद में ही जो है ना वो इन्होंने अर्श की सैर करके वापस आ गए, और नींद में ही उन्होंने सुलूक के जो है ना वो सारे यानी जो भी वो थे, क्या कहते हैं उनको, चार मुकामात होते हैं ना, तो वो सारे के सारे नींद में ही तय कर लिए उन्होंने, और नींद में उनको विलायत कुबरा मिल गई। ठीक है, आजकल हम यही चाहते हैं कि तसव्वुफ के जो जो भी मकामात हैं वो हमें नींद में ही मिल जाया करें। ठीक है, तो इसी वजह से फिर हम तावीलुल अहादीस को जो है ना वो सिर्फ ख्वाबों की तावीर से ही ट्रांसलेट कर देते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। ठीक है ना, इसमें तो बहुत सारी चीजें शामिल है, इल्म का सही हासिल होना, सही इल्म का हासिल होना, फिर उस इल्म को जो है वो सही समझना, और फिर उस इल्म को जो है वो यानी उसकी एप्लीकेशन अपनी जिंदगी के अंदर समझना। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना वो उसको अप्लाई करने की तौफीक मिलना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। नहीं, कुतुब अब्दाल वगैरह मतलब वो चार जो है वो क्या कहते हैं उसको, किसी को याद अगर है तो बता दे। तो हाँ, तो मक्कन्ना यूसुफ ऑफ फिल अर्थ, ठीक है, जमीन के अंदर उनको हमने इस्टेब्लिश किया ताकि वो अमन अमान कायम करें। इसी आयत की सुयूर अरबा, जज़ाकुम अल्लाह, सुयूर अरबा चार सैरें, ठीक है ना, फिना, बका, उरूज और नुजूल, ये चार सैरें होती हैं जिससे अंदर जो है ना वो सलूक तय हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा मेहनतों से तय होती हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जिक्र मुराकबा करना पड़ता है, शेख के साथ जो है वो राबता रखना पड़ता है, और है ना अपने नफ्स को मारना पड़ता है, और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सुयूर अरबा जो है वो तैर होते हैं, चार सैरें। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो मनाम के अंदर इनको तय कर लेते हैं। ठीक है, तो मनाम में तो नहीं होता भाई ये। अच्छा, अल्लाह ताला ने इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो अपने कुरान के अंदर यानी दीगर मकामात के ऊपर समझाया है। पहले भी हम तर्जुमे में भी गालबन इसको हम टच कर चुके हैं, कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना एक और जगह पे, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ये वो लोग होते हैं कि अगर हम उनको जमीन के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं ना, अथॉरिटी देते हैं ना, अकाम अस्सलात व आतवुस ज़कात व अमरु बिल मारूफ व नहु अनिल मुनकर। ठीक है ना, तो वो ये काम, चार काम कर रहे होते हैं कि नमाज कायम करते हैं, ज़कात का जो है वो पूरा का पूरा निज़ाम बनाते हैं, यानी अल्लाह ताला के साथ बंदगी है ना, अल्लाह ताला की इबादत का जो है वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, खुद भी इबादत करते हैं और अपने मुल्क के लोगों के लिए इबादत करने के मौके का भी इंतजाम करते हैं। जैसे कि नमाज का टाइम आ गया तो भाई उस वक्त जो है ना वो कारोबारी जिंदगी को जो है वो बंद कर दिया जाएगा ताकि लोग जो है वो जाकर के नमाज पढ़ सकें। ठीक है, नमाज के रास्ते की जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को हटाया जाएगा मुल्क के अंदर से। ठीक है ना, जैसे कि लाउड स्पीकर के ऊपर म्यूजिक लोगों ने चलाई हुई है, अभी कल ही जा रहे थे कहीं मस्जिद की तरफ, है ना, उधर से जो है वो मस्जिद से इकामत की आवाज आ रही है ना, पता नहीं कुछ जगहों पे इन्होंने इकामत की आवाज बंद नहीं करी है, और इधर से जो है ना वो एक साहब जो है वो फुल लाउड स्पीकर के ऊपर जो है वो गाड़ी के अंदर म्यूजिक लगा करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज की जो है वो इस्लामी मुमलिकत के अंदर इसकी इजाजत नहीं होगी। ठीक है, उसी तरह जकात का मामला क्या है, अल्लाह के बंदों की जरूरियात को पूरी करने का निजाम। ठीक है, और फिर अमरु बिल मारूफ व नहु अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म करने का जो है वो पूरा का पूरा एक मुहिकमा बनाया जाएगा, वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देगा। ठीक है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो हमने इसलिए जमीन के अंदर एस्टैब्लिश किया, और इन चारों काम करने के लिए जिस इल्म की और जिस तौफीक की जरूरत होती है वो नुअल्लिमहु मिन तावील अल अहादीस इसके अंदर बयान फरमा दिया। फिर अल्लाह ताला जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर जो है वो अपनी अजमत पर बयान फरमाते हैं, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, यानी अल्लाह ताला गालिब और कादिर है ऐसे काम पर जो उसका इरादा होता है, तमाम आलम के असबाब जाहिरा उसके मुताबिक होते चले जाते हैं, जो उसका इरादा होता है तमाम आलम के असबाब जाहिरा उसके मुताबिक होते चले जाते हैं। जैसे एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो दुनिया के सारे असबाब उसके लिए तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो असबाब भी अल्लाह ताला के मुकम्मल कुदरत के अंदर है, मुसब्बिबुल असबाब, असबाब को बनाने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। ठीक है, तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला ने ये सिस्टम सेट कर दिया है दुनिया में, समझ लें ये सिस्टम फिट कर दिया है। क्या फिट कर दिया है? कि असबाब के जरिए से काम करवाएंगे, ठीक है। तो अब असबाब के जरिए से काम करवाएंगे तो भाई असबाब भी तो फिर होंगे तो काम होगा ना, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं है कि असबाब जो है वो किसी और के हवाले हो गए हैं, कोई कोई जो है वो दूसरे किस्म का कोई खुदा है जो कि असबाब को मैनेज करता है, और नाउज बिल्ला अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो रिजल्ट्स को मैनेज करते हैं। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है। यानी मीन्स भी अल्लाह ही मैनेज कर रहा होता है और रिजल्ट्स भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते, ठीक है। इसमें जो है ना कि रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में हैं और असबाब भी अल्लाह के हाथ में हैं, ये एक लेवल ऑफ डिटेल है कि जिसके अंदर अक्सर लोगों की अकने जो है ना वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे एक लेबरिंथ होता है ना, लेबरिंथ समझते हैं वो जो भूल भुलैया, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए, बल्कि अक्सर लोगों के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी क्या फरमाया, अक्सर अन्नास ला यालमून, तो अक्सर लोग जो है ना वो यानी थ्योरेटिकली दे नो इट एंड वर्बली दे एक्नॉलेज इट कि अल्लाह जो है वो कादर मुतलक है, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पे कुदरत रखता है, और अल्लाह ताला यानी खालिक है, मालिक है, सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, और जुबान से कहते भी हैं कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस तो वहां पे आकर के कहीं गुमशुम हो जाते हैं, है ना। ये यानी वहां पे आकर के फिर इन चीजों को जो है ना वो यानी याद रखना और इनको जो है वो प्रैक्टिकली यानी रिलेट करना अपनी जिंदगी से या किसी और की जिंदगी से, यहां पे आके फेल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हमें इल्म नहीं है या हम इस बात का इकरार नहीं करते, करते हैं सब कुछ, इल्म भी सब कुछ है, लेकिन वही जब पड़ती है सर पे आकर के तो फिर व्हेन द गोइंग गेट्स टफ ओनली द टफ गेट गोइंग, है ना। उसके लिए फिर टफनेस की जरूरत पड़ती है, यानी ईमान की मजबूती की जरूरत पड़ती है। तो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, तो फिर तो जिसका मजबूत ईमान होगा ना, ओनली ओनली दे गेट गोइंग, बाकी सारे जो है ना उनकी इधर उधर लॉस्ट हो जाती है। तो फरमाते हैं कि अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते और असबाब जाहिरा ही को सब कुछ समझकर उन्हीं की फिक्र में लगे रहते हैं, मुसब्बिबुल असबाब और कादर मुतलक की तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है। यानी इम्प्लीमेंटेशन लेवल डिटेल में आकर के फिर जो है ना फिर वो अल्लाह ताला पिक्चर से गायब हो जाता है और बस असबाब ही असबाब रह जाते हैं उनकी जिंदगी में, यही सोच, यही फिक्र, यही मेहनत, यही जो है वो यानी सारी की सारी तवज्जो, ठीक है। तो फिर वही जो बच्चों की सीरत क्लास के अंदर अभी बात हुई थी पिछले सैटरडे को, कि अल्लाह का जिक्र और तकवा का जिक्र और जो है वो इखलाकियात का जिक्र, ये तो मस्जिद में छोड़ करके आ जाते हैं, है ना। वो मस्जिद की चीज है, वो तबलीगी इज्तिमा की बातें हैं, वो नक्शबंदी इज्तिमा की बातें हैं, है ना। वो बयान के अंदर जो है वो अल्लाह का जिक्र बहुत होगा, मुराकबे के अंदर भी अल्लाह 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 बहुत होगा, है ना, और जोर से आवाज भी आएगी अल्लाह, ठीक है। लेकिन जहां पर जो है वो प्रैक्टिकल जिंदगी के मामला तय करने की बात आई, वहां पे तो फिर लेट्स गेट इनटू प्रैक्टिकलिटी, जिसको के परवेज मुशर्रफ जो है ना वो क्या कहता था, ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है ना, वो कहता था ग्राउंड रियलिटीज, है ना। बाकी मौलवियों की चीजें जो है ना वो मौलवी जाने, वो उनके खानकाहों में उनकी मस्जिदों के अंदर जो है वो अच्छी चीज है, वो ये नहीं कहता था कि नहीं हम मुसलमान नहीं है, वो कोई मुलहिद, वो कोई एथियस नहीं था, वो कोई एथियस नहीं था, ठीक है ना। वो भी मुसलमान था और बड़ा अल्लाह अल्लाह मुसलमान, है ना, सब कुछ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या जहां पर काम की बात आती है ना, तो वहां पे तो भाई हमने काइजर के तरीके पे काम करना है, और बातें बातें जो है वो तुम करो, बेशक तुम मस्जिद में बैठ करके सारी बातें कर लिया करना, ठीक है। तो ये दीन के साथ जो है वो एक मजाक है, ठीक है, और जिसने दीन के साथ मजाक बनाया होगा ना, तो उसके साथ फिर अल्लाह ताला कयामत के दिन बहुत निपटेंगे। और इसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि तुमने अपने दीन को क्या बनाया हुआ था, मजाक बनाया हुआ था ना। ठीक है, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। मानते हैं सब कुछ मगर बिजनेस झूठ के बगैर नहीं चल सकता, है ना। बिजनेस ऑफ लाइफ, ये झूठ, धोखा और मटीरियलिस्टिक सोच, है ना, इसके बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, तो बात वही है कि अल्लाह तो अपने अपने सारे मामलात के ऊपर गालिब है, लेकिन जो इंसान है ना हमारे जैसे, तो वो इस बात को नहीं समझते। ठीक है, अल्लाह ताला से हमें तौफीक मांगनी चाहिए कि हमें बात की समझ सही मानों में अता फरमाए, और उस समझ को जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर और अपनी इज्तमाही ज़िंदगियों के अंदर उस समझ की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को देखना और समझना, उसकी भी तौफीक अता फरमाए, और फिर उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगियों को उस इल्म के मुताबिक ढालने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम।